जैसे किसी को अच्छे खाने की आदत पड़ गई है तो इंद्रिय जवान होती है और खाना जो है उससे उसको अटैचमेंट होता जाता है। किसी को अच्छी बात सुनने की आदत पड़ गई, कान इंद्रिय होते हैं और वो जो बातें हम सुनते हैं वो सब ऐसी होती हैं जो कि हमें अगर खाना खराब मिले तो मन का इन्वॉल्वमेंट होता है, झुंझलाता है कि साहब आज बड़ा खराब खाना मिला। अगर 30 दिन में आपको 20 दिन अच्छा खाना मिला, हम लोग नहीं कहेंगे कि कथा खाना हमें बड़ा अच्छा मिला, और एक दिन भी खराब मिला उसका चर्चा बराबर करते रहेंगे। साहब फलाना पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे खाना। क्या है, हमारा लगाव है इंद्री से, हमारे इंद्री से, उस इंद्री से जो उसे भोगती है उससे प्रेम हो गया। संत ऐसे हुए हैं जिनको यही नहीं मालूम वो क्या खाते थे। एक मुसलमान बुजुर्ग हुए, उनके पास दूसरे बुजुर्ग पहुंचे तो जब खाना आया उन्होंने कहा आप सब मीट मछली खाते हैं, तो उन्हें मालूम नहीं पड़ी। उन्होंने खानसामा को बुलाया, अपने खानसामा आया तो उन्होंने गोश्त वोश्त खाते, उन्हें यहाँ सब खाते हैं। उन्होंने आज से मतलब तो सब जो ईश्वर दे देता है उसे खा लेते, हमने कभी ये नहीं सोचा। उन साहब आप दाल रोटी खाते हैं, आप सोचते हैं हम दाल रोटी खा रहे हैं। तो जो चीज में हमारा लगाव होगा उसको हम सोचेंगे, इसमें नहीं होगा। कई मरते आपने पढ़ा होगा लाला जी महाराज साहब खाना खा गए, दाल में नमक ही नहीं था, उन्हें भी मालूम नहीं पड़ा होगा वो था। तो क्या था, इंद्री का उससे कोई अटैचमेंट नहीं था। जब तक जिन चीजों में आपका अटैचमेंट होगा वो इंद्री भोग होगा, चाहे वो कैसे ही हो, उसी को जो रूप है। क्योंकि जब वो अटैचमेंट बढ़ता जाता है तो वो प्रेम में बदल जाता है, यही इंद्री प्रेम कहलाता है। दूसरा मन उससे हमारा अटैचमेंट हो गया या प्रेम हो गया, जिससे हमें बेनिफिट नहीं है। हम कहते हैं सब बड़े रूखे आदमी थे, अरे भाई तुमसे कोई कंसर्न नहीं, कहे कि रूखे सूखे थे। तो ये हमारे ही अपना मन का खेल है जिससे जितना बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट भी मन ही तक है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है कि हर एक से अच्छा व्यवहार करो, न हो तो बेरुखी कर लो, उसे मिले तब भी हर तरह से व्यवहार में आपकी कोई कमी ना हो, व्यवहार में कोई कमी ना हो, उसे कोई टॉयलेट नहीं कर पाता। जो भी आपका व्यवहार, तो आपको किसी से फिर अटैचमेंट वो नहीं होगी, प्रेम होता है। हमें ये मतलब नहीं किया इसमें अच्छाई क्या है बुराई है, हमें उससे प्रेम है। ये प्रेम जितने ये तीनों तरह के प्रेम है, इनके पीछे कोई ना कोई चीज छिपी रहती है। जब वो नहीं पूरी होती उन्हें हटा गई तब आपसे बेर प्रवाही हो जाती है, कोई कंसर्न नहीं रहता। जो ऐसे प्रेम होते हैं जिसमें कोई वो नहीं, वही परमानेंट प्रेम, यही आत्मा का प्रेम है। आत्मा के ही प्रेम स्वरूप है और वो हर दूसरी आत्मा को उसी तरह प्रेम करती है, वो कभी भी उसको छोड़ नहीं सकती, उसके प्रेम को। बचे हुए जैसा जैसा है, कोई आदमी आज तमाकू खा रहा है, कल को नुकसान की छोड़ दिया, कहाँ मतलब उससे बोला किसी चीज का भी देख लीजिए। इसी में कुछ लोग कहते हैं तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क तर्क तर्क। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ ये है किसी चीज को छोड़ो मत। अच्छाई को और ईश्वर के नाम को इतना बढ़ा दो कि सब चीजें अपने आप छूट जाए। बैराग जो है, अभी किसी के लिए आपने कष्ट में देखा, आपको उसके कष्टों का ख्याल आ गया, उस डर की वजह से आपने उस चीज का इस्तेमाल नहीं किया, फिर वातावरण बदला, वो चीज आप करने लगे। हमारे यहाँ का तरीका यह है कि अपनी अच्छाइयों को धीरे धीरे इतना बढ़ाते चले जाओ और ईश्वर के नाम को इतना बढ़ाते चले जाओ कि बुद्धि मन और इंद्रियां किसी में फंसे नहीं। ये अनुराग का तरीका कहलाता है, हमारे यहाँ बैराग का तरीका नहीं है। जितने लोग छोड़ के चले गए, किसी में देख लीजिए, किसी न किसी युग में उसमें परिवर्तन होगा। ये जो ग्री फैमिली है, इनके उनके बड़े भारी सन्यासी होते 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 धीरे धीरे सबने शादी की, परिवार बढ़ा। तो किसी न किसी वक्त यह है जिसने उसमें आके छुआ और ईश्वर से अनुराग नहीं है, वो बैराग रुक नहीं सकता। खाली ईश्वर से जब इतना अनुराग हो जाए तो सब चीजें धीरे धीरे छूटती चली जाती हैं। उसका समय है ही नहीं, मतलब वो अभ्यासी है। अभ्यासी वो है जो किसी एक चीज का बार बार याद करके कोशिश कर रहा करने की। सत्संग वो है जिसका एक लक्ष्य है। उस वक्त हम लोग छोटे थे, समझ नहीं पाते थे, जब पैर दाबते थे मुड़ते पूछते थे, हाँ बेटे बताओ क्या क्या करोगे। एक्चुअली जो फिफ्थ सिक्स में लड़का पढ़ता है उसको कितनी अकल होती थी। उन्हीं लोगों के बीच में रहे, उनका दाई डॉक्टर बनोगे, हाँ जरूर डॉक्टर बनोगे। उन्होंने कहा अच्छा और बताओ। तो उनका दाऊजी खूब बड़ा मकान बनवाएंगे। उन्होंने कहा हाँ जरूर मकान बनवाओगे। फिर सुन रखा था कि लाला जी महाराज साहब को कार के कार खरीद, जो जो कहते थे वो पूछते थे। पूछने का मतलब जो चीज आपके मन में होगी वही तो आप बताएंगे। उन बेटे और कोई इच्छा तो नहीं है, उन्होंने बस अब इतना ही तक सीमित रहना। कुछ लोगों को कष्ट में देखा तो उन्होंने ताऊजी हम लोग ये बड़े हो गए खूब पैसा कमाएंगे तो इनको सत्संगों की सेवा करेंगे। उन्होंने हाँ हाँ बेटे जरूर करोगे। तो जब वो उसको समझते थे, हम लोग भी समझते थे कि इतना हम लोगों को वो करते हैं कि हर चीज पूछते रहते हैं। और बुजुर्गों का आशीर्वाद उनसे सब पूरी करा दी, कि सब चीजें पूरी भी करा दी। और उनका वही ध्येय तुम्हारा ये था, जिस वातावरण में आप रहेंगे वैसे ही आपकी सोच होती चली जाएगी और फिर आप अपना लक्ष्य कायम कर लीजिए। बड़े सब कुछ होते हुए भी ये है कि इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना है। जैसे जब एंड होता था तो एक ही होता था, बेटे एक जीवन की हमसे बात करना, इसी जीवन में करना है। तो देखिए जब तक आपका लक्ष्य नहीं है तब तक कायदे से आप सत्संगी नहीं है। कहते हैं हम लोग जरूर है, जब आपने अपना ये लक्ष्य बना लिया कि हमें सत्य के रास्ते पर चल के ईश्वर को प्राप्त करना है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी सेक्रीफाइस देनी है वो देंगे, तब आप सत्संगी होंगे। उसके अतिरिक्त लोग जो हैं वो अभ्यासी हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी अपना लक्ष्य फिक्स नहीं किया। हमने इस लक्ष्य को फिक्स कर लीजिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये है, इसमें हमें जो सेक्रीफाइस देनी पड़ेंगी, जो रास्ते में बाधक आती चली जाएंगी, हम सब उन बाधाओं को हटाते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्य नहीं है तब तक आप उसका अभ्यास कर रहे हैं कि सब हमको ये कभी बुरा नहीं लगा कि उन्होंने कहा बेटे ये काम कर दो, कभी बुरा नहीं लगा। ये था कि एक लक्ष्य था, एक प्रेम था, जिसकी वजह से तो खाली इस लक्ष्य को अपने तय कर लीजिए कि हमें इस जीवन में इतना करना है, और उसके बाद जो भी चीज हो, यानी हमेशा यही कहा नहीं बेटे जो उन्होंने किया वो तुम सब कर सकते हो, बल्कि हो सकता है कि जो वो ना कर पाए वो तुम करके दिखा दो। हमेशा हमने ये साथ दिया नहीं, हमने कहा नहीं जो वो ना कर पाए हमने तुम्हें वो करके दिखा दोगे। एक साहब ने शिकायत के तौर पर उनसे ये कहा कि सेठ दिन्ना और बाबू जी ने मिलकर एक अलग सत्संग कर लिया, उनका बड़ा अच्छा। उन्होंने कहा तो शिकायत तौर पर उनका जो काम मेरे मरने की बात करते कम से कम मेरी आंखों के सामने हो गया, मुझे इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं हो सकती। बेचारा अपने मुंह उस बार जब हम लोग गए तो उनका देखिए साहब इतने साल से आ रहे हैं और ये उनके व्यूज हैं, क्या भला हो सकता है इनका बेटा। यानी बहुत पुराने सत्संगी थे वो, कोई पूज्य लाला जी महाराज साहब के भी सोहत में आए थे। क्या था, नजरिया नहीं बदला था। तो जब तक अपना वो नहीं होगा तब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा, और जब लक्ष्य हो जाएगा तो फिर आपको ईश्वर की हर वस्तु प्रिय लगने लगेगी, हर चीज प्रिय लगने लगेगी, और उसी पर आप चलते चले जाएंगे। ये प्रेम की वो ऐसी है जो आदमी को इस भवसागर से पार कर देगी। ईश्वर की केवल इतनी जिम्मेदारी थी कि उसने दया करके हम लोगों के अच्छे कर्म की वजह से हमें इंसान बना दिया। अब अच्छा इंसान, मुकम्मल इंसान बनना ये हमारे हाथ में, ईश्वर मदद कर देगा। मदद भी किसी के जरिए से कराएगा, उसी को पकड़ के जैसे और लोग बने वैसे ही बनते चले जाइए। जितने लोग थे वो सब लोग हमने, हमारे बुजुर्गों ने चार पांच आदमी चुन लिए, भाई हमें ही क्या जिक्र करेंगे, इन्हीं के बारे में होंगे, औरों को मिल गए तो बाद में सोचेंगे। नबी पूज्य लाल जी महाराज साहब थे, चाचा जी महाराज साहब थे, ताऊ जी थे, बाऊ जी थे, तो हम लोगों ने चार पांच लोगों को सिलेक्ट कर लिया कि साहब इन्हीं के जीवन के बारे में जिक्र करेंगे, इन्हीं के होंगे और वैसे ही बनते चले जाएंगे। अगर इन सब चीजों से बनने से आपको वो नहीं होता तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, उस कमी को देखिए, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करिए, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करिए, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। कोई धोखा नहीं, हमने देखा देखिए भाई साहब को देख लीजिए, उन्होंने भी गाड़ी खरीदी, मकान खरीदा, खूब लोगों की वहां स्पेशली गाजियाबाद के सभी भाइयों की, अपने ही संगठन के थे, बाहर के थे, सेवा की, यही वो बचपन बताते रहते। हम लोग भी सोचते थे कि हम लोग कितने वीआईपी हैं, हम ही लोग की बात सुनते रहते हैं, उस वक्त ये समझ में नहीं आता। हमने हाँ बेटे और क्या करोगे, और क्या करोगे, खाने में तुम्हें क्या अच्छा लगता है। इसी तरह आलू के अलावा हम लोग कुछ नहीं खाते थे, आई थाली फेंक दी। तो बाबूजी का बेटी सब कुछ खाना चाहिए, नहीं समझ में आया। उसके बाद माता जी से कहा कि घर में आलू नहीं बनेगा। शलजम में टमाटर ही बड़ी खराब लगती थी, रोज ही बनता था। ये इंद्रिय भोग को खत्म करना था। रिश्तेदार समझाते थे कि ये माँ दूसरी होती बाप तीसरा होता, क्योंकि दुनियादार थे, वो दुनिया ही तक की लिमिट रखे हुए थे। यानी सच्चाई ये है, सिवा तीन लोगों को छोड़ के कभी किसी ने सही राय ही नहीं दी। गुरुदेव के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, नहीं बेटे, किसी से चीज से लगाव नहीं होना चाहिए खाने का। जीवन का एक पार्ट खत्म हुआ। जब हम लोग नौकरी से जाया करते थे तो आप कहते, देखो माता जी से कि इन लोग को बड़ी बेसन उसन बहुत पसंद है, बना दो। लेकिन वही लोग थे, वही था, लेकिन अब यह था कि उसकी आदत नहीं थी, उसकी आदत नहीं थी। तो ये प्रैक्टिकल वे है कि जिस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, जिस तरह से पिक्चर कभी नहीं देखी। हमारे बगल में एक्साइज इंस्पेक्टर रहते थे, वो चार आदमी का पास दे देते थे, हम लोग दूसरों को दे देते थे, क्योंकि आदत नहीं थी जीवन भर देखने की। तो जिस चीज की आप आदत डाल लेंगे वैसे ही बनता चला जाएगा। और अगर परमार्थ के रास्ते पर चल के जीवन में चेंजेस ना आए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फर्क किसी चीज में कहीं ना कहीं। और वो तभी होगा, पालतू गाय है, पालतू कुत्ता है, दुनिया भर में घूम रहा है, शाम को आ जाता है। ऐसे ही मन का हाल होता है, दुनिया भर में घूम रहा है, शाम को गुरु के चरणों में दिन भर अगर लगा रहे तो उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। और कुछ कसर रह जाती है। देखिए इसको भी समझ ले, सत्संग की इजाजत तब दे देते हैं जब किसी पर ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी होती है, जगह की सुविधा हो सकती है, और वो कुछ आदमियों को कलेक्ट कर सकता है। तो ऐसे अभ्यासी जब आ जाते हैं तो उनका भी आप सत्संग कराए। जब यही अभ्यासी तरक्की करते करते आज्ञा चक्र पर पहुंच जाते हैं, और जैसे लोग कहते हैं बड़े भले आदमी हैं, तो उन्हें भय रहता है कि हमसे कोई काम ऐसे ना होता, तो फार बेटर करेक्टर फॉर्मेशन उनको इजाज़त तालीम दे देते हैं। अब जैसे कोई शख्स है उसमें कोई कमी है तो वो या तो उसे कोशिश करेगा दूर हो जाए और दूसरों के सामने एक्सपोज ना हो। जब पहले ज्यादातर शर्ती इजाजत देते हैं तालीम की, फिर जब ये देखते हैं कि इसका आज्ञा चक्र अच्छी तरह खुल गया, तब ये कहते हैं कि अच्छा भाई इजाजत तालीम तुमको है। तो ये नहीं कि वो मॉनिटर हो गया, उसको सुधार का मौका दिया गया के? और जब उसको कंप्लीट फेथ हो गया और अपने गुरु में लय हो गया, तब उसको इजाजत वैद दे देते हैं। सिलसिले की इजाजत तब भी नहीं देते हैं। और जब 100% ऊपर से बार बार ये नोटिस मिलता रहता है कि साहब इनको ये दे दीजिए, तब सिलसिले के साथ देते उन्हीं लोगों का नाम जो है सिलसिले में लिखने का अधिकार होता है। उनमें किसी न किसी बुजुर्ग की उस वक्त भी ये हजरत मासूम साहब की जो सरहिंद के थे, ये उनका हुक्म था जब ताऊजी महाराज ने दी थी। इसीलिए वो बार बार कहते थे बेटे जीवन में मुकम्मल तभी हो गए जब सरिंद हुआ हो गए। तो न तो सरिंद के बारे में जब ज्ञान था 54 में, न ये मालूम था ये क्या है। बहरहाल एक उनका ये था कि हाँ जीवन में सरेंडर जरूर होना। बात खत्म हो गई। महाजी महाराज साहब ने भी अपनी डायरी में लिखा, इसीलिए डायरी बड़ी जरूरी होती है। फिर भाई साहब की उसमें डायरी पढ़ रहे थे तो उसमें ये था कि आज बड़ी अच्छी हालत थी, और बाबूजी महाराज साहब ने कहा था कि मासूम रजा साहब के यहाँ। तो ये नहीं था, ये नहीं कहा था आप पलियर चले जाना, ये नहीं कहा था कहीं चले जाना बिहार शरीफ, लेकिन सरहिंद के लिए इसीलिए इंसिस्ट किया था कि सरहिंद में चले जाइए। फिर ये है कि आपको हरेक शख्स का चाहे वो सिलसिले के सब बुजुर्ग आशीर्वाद देते जितने हैं, क्योंकि फिर आपका सिलसिला जुड़ जाता है। और ऐसे ही शख्स दूसरे शख्स को अपने सिलसिले में दाखिल कर सकते हैं। जैसे होता है ना कास्ट का डिवीजन, इसी तरह भी है कि सत्संग के भी सेग्रेशन होते हैं। एक साहब ने लिखा कि साहब इतने लोग यहां परेशान है, आप किसी को दीक्षा नहीं देते, तो मैं और आपने वादा किया था कि जितने भाई साहब से लोग कनेक्टेड हैं उन्हें जरूर दीक्षा दे देंगे, तो उनका भी हमारे वक्त वापसी का देर है, उपचारिक दीक्षा जब कहोगे दे देंगे। एक उपचारिक दीक्षा है, देखिए बाबू के टाइम के लोग थे छोड़ के चले गए, भाई साहब के टाइम के लोग थे छोड़ के चले गए, ताऊजी के टाइम के थे छोड़ के, ये उपचारिक दीक्षा है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। असली दीक्षा यही है कि आप अपने लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि मुझे अपना इसी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो ही असली दीक्षा है। गुरु सबकी मदद में, चाहे आप दीक्षित हो या ना हो, सत्संग में आते हैं। देखिए गुप्ता जी की वाइफ से पूछ लीजिए, वो दो दिन रहे अस्पताल में, वो करती थी रोज हम देखते थे साहब ताऊजी बाबूजी, उन्होंने न ताऊजी को देखा न बाबूजी को देखा। तो वो उतनी दया तो हर एक की होगी, लेकिन ये दया होगी खाली ऑब्लिगेशन जैसे कहते हैं सब, एक ये खुश हो के आता है कि सब ये हमारा, जैसे किसी के स्कूल का बच्चा जब फर्स्ट आता है तो टीचर खुशी होकर कहता है सब ये हमारा यहाँ का स्टूडेंट है, ये फर्स्ट आ गया था। और कोई दूसरा पास होता है थर्ड का तो इंट्रोडक्शन कराता है साहब ये हमारे यहाँ के भी थे, फेल होता है उसका भी कराता है, लेकिन तीनों में फर्क हो जाता है। तो एक्चुअली बात यही होती है कि किस तरह से आप अपने सिलसिले में दाखिल हो कि अपने लक्ष्य को समझें और प्राप्त करें। और जब तक ये नहीं है तो गुरु की दया तो होगी लेकिन कृपा नहीं हो सकती। कृपा के पात्र वही बनेंगे, जैसे ईश्वर की दया हर शख्स पर है, यूनिवर्सल है, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, कोई भी हो, लेकिन कृपा विशेष लोगों पर होती है। इसलिए कृपा पात्र बनिए, उसी के लिए हम लोग आशीर्वाद के लिए जगह जगह जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि उनका आशीर्वाद मिले, हमको हिम्मत हो। और सबको ये सब चीजें दिक्कतें आई हैं। लाला जी महाराज साहब ने जब पहली मरतबा सत्संग हुआ तो यही लिखा कि लोगों के ऐसे है जिंदगी के हालात हैं कि मुझे शुभा है कि सत्संग, उनको नहीं बेटे मेरे बुढ़ापे की कमजोरी ने तो मैं असर कर दिया, फिर भी मैं इतनी हिम्मत रखता हूं, पत्थर को भी देखूं तो उसे चूर चूर कर लो, हिम्मत करो, सत्संग करो, ईश्वर के नाम में शक्ति है। और देखिए साहब वो सत्संग आज भी कायम है। तो कोशिश यही करिए कि जिस तरह से भी हो, जैसा उन लोगों ने बताया उसे हम कैसे फॉलो करके कर सकते हैं। देव जन्म लिए कहते हैं अब साहब दुनिया संतों से खाली हो गई। हम बहुत भाई आपने निर्णय लिया कि हमें कॉल्विन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़े भी नहीं, अनपढ़े रह गए खाली अपने उसके भाई दूसरी जगह देखो उसके बाद देखो, तो किसी तरह से भी ईश्वर का नाम तो शुरू करें, किसी स्कूल से शुरू करें, नाम शुरू करें, आगे कहीं ना कहीं से ईश्वर की दया होके किसी ना किसी उस पर आपको मुकाम पर पहुंचा के वो अपने आप बंदोबस्त करता है। और तभी भगवान कृष्ण ने लिखा है, जो एक मरता मेरी तरफ चलता है मैं 100 कदम उसकी तरफ चल के जाता हूँ। लेकिन खाली हम कहते रहे साहब जमाना ये हो गया, पिछला जमाना वो था। अभी एक साहब ने हम लोग को उसके बड़ा अच्छा बताया था, जैसा जो हम लोग बताते हैं कि पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, प्रेजेंट इज ए गिफ्ट विच वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट। पिछली कहानी हमारी शादी ऐसे हुई थी, हमारा विवाह ऐसे हुआ था, तो वो सब चीजें कहानी में बदल गई। फ्यूचर के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं, लेकिन वर्तमान को अच्छा बरतते नहीं। जो भूत है उसे भूलते चले जाइए, उसको रोने से कोई फायदा नहीं, रीडर नहीं हो सकता। जो वर्तमान है उसको अच्छा बरतिए, भविष्य अपने आप बढ़ता चला जाए। जिस पर भी जरा सा कष्ट आता है, पता नहीं हमने साहब क्या पाप किए, अरे भाई जो पाप कर चुके हो वो रीडर तो हो नहीं सकते। अब ये कि उनको धोने का जरिया ये ईश्वर का नाम लेते रहिए, वो जिस चीज से धोई जाए उसे कोशिश करने से खाली और रोना के साथ बड़े पता नहीं साहब अब आगे कोई कष्ट ना आए। तो जितने पिछले किए हैं उन्हें तो खत्म करिए, उनको खत्म करने का यही तरीका है कि जो भी बेहतर से बेहतर हो कि साहब ये ईश्वर की तरफ से दिया हुआ है, समझे, किसको कष्ट नहीं हुए। किसी को देखिए, लाला जी महाराज साहब को खुद स्टमक का कैंसर था, समझे, चाचा जी महाराज साहब को फालिस मार गया था, ताऊ जी महाराज साहब को फालिस लग हो गया था, भाऊ जी महाराज साहब का फ्रैक्चर, किसे नहीं कष्ट हुए। तो चाहे उसका रीजन कुछ हो, उन साहब ने दूसरे का ले लिया, फिर रीजन जो है उसे खुशी खुशी भोगिए और ये देखिए कि बेस्ट इससे क्या हो सकता है। जब तक वर्तमान को अच्छे से अच्छा नहीं वर्त करेंगे, जो वक्त निकल जाएगा वो वापस नहीं आ सकता, चाहे वो किसी का हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि वर्तमान में आप कितना अच्छा कर सकते हैं। होती है उसको अरूस कहते हैं उर्दू में, और जब आप नीचे आ जाते हैं उसको नजूल कहते हैं। हम लोग के यहाँ बीच का तरीका लिया जाता है, पहले गुरु अपने कुब्बत इरादी से शिष्य को एक प्लेस तक जहां तक उसकी अप्रोच होती है वहां पहुंचा देता है। जैसे हमने आपको दिल्ली दिखा दी और अच्छी अच्छी चीजें देख ली हमने, आपको दिल्ली का रस हो गया, फिर आप अपनी मेहनत करके दिल्ली जाते हैं, ट्रेन से गए देखा और फिर वहां घूमने लगते हैं। हमारे यहाँ का यही तरीका, इसीलिए इसे कहते हैं कि पहले रूस और फिर सलूक, तब जाके सलूक आपकी अपनी मेहनत होती है। अगर आपने मेहनत करके दिल्ली देख ली और उसकी इंटरेस्ट हट गया, माना आना जाना सत्संग बंद कर दिया, हट गया, नेचुरली वो वैसे ही दबा हुआ काल पड़ा रहेगा। मेहनत आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, दूसरा आदमी सहारा दे सकता है। एक साहब की अभी परसों चिट्ठी आई थी कि हमने भाई साहब से पूछा कि साहब हम मंगल का व्रत रहना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं व्रत फर्त नहीं रहे, कम खाओ एक रोटी, लेकिन व्रत मत रहो। नहीं माने, अब कहां मतलब कहना तुम मान, नहीं माने अब शरीर में तकलीफ हुई तो बोले अब व्रत तोड़ना चाहते हैं। तो देखिए एक रखा भी नहीं? और एक वो नियम वो होता है जो पर कभी न टूटे, और उसी पर लोगों ने कहा है कि रघुकुल वीर सदा चले आई, प्राण जाए तो जाए, वचन न जाए। तो जो भी नियम आप बनाए वो ऐसा बनाए कि फिर टूटे नहीं। टूट गया फिर नियम ही क्या है। कुछ लोग थे उनसे बगैर नहाए हम नहीं पूजा करते, ये सब चीजें ही हैं। ये सब चीजें दुनिया भी चीजें हैं, स्थूल तक रिलेट करती हैं। उनसे हम बगैर पूजा किए कुछ खाते नहीं, ये सब चीजें जितनी हैं ये उससे वो करती हैं। हमें स्थूल का सहारा लेके मन से काम लेना है। तो स्थूल को तो बस ये है, साफ कपड़े पहन लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, नहीं सही अलाउ करता। लेकिन जब तक हमारा अलाउ कर रहा है तब तक हम नहा धो रहे हैं, नहीं अलाउ करता कुल्ला भी कर लिया, वो भी नहीं कर लिया तो वैसे ही चारपाई बैठ गए। लेकिन अब एक तंदुरुस्त आदमी जो कि बैठ के पूजा कर सकता है और वो कहे हम लेटे लेटे कर लेते हैं, जब तक शरीर ने दिया है तो बाय रिस्पेक्ट जाइए, और जब मजबूरी है तो वो खुद मदद करता है, पर जैसे भी हो वो ठीक है। तो नियम ऐसे बनाए, ये सब दुनियावी चीजें हैं, स्थूल से कनेक्टेड है, कि जिसमें आप वो कर सकें। और अगर मन में बदलाव नहीं होता तब ये सब बेकार है। चाहे आप नहा के पूजा करें, चाहे धो के पूजा करें, चाहे किसी तरह करें, मन का परिवर्तन जरूर होना चाहिए। मन का परिवर्तन जब तभी होगा जब आप बराबर सत्संग में आते रहेंगे। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, और इसीलिए हर उसमें सत्संग की महिमाई है कि बिन सत्संग विवेक नहीं हो, तब तक विवेक नहीं होगा, और तभी राम कृपा उस पर सुलभ होगी। सत्संग मुफ्त इंपॉर्टेंट, बार बार देखिए, बराबर कह रहे लोगों से कि लोग लोकली सत्संग नहीं है तो वहां सत्संग नहीं, हमारी समझ में तो भंडारे ही नहीं होना चाहिए। जहां रेगुलर सत्संग नहीं है वहां भंडारे ही बेकार है। 20 आदमी गए वहां इकट्ठे हुए, पैसा खर्च हुआ, वो आदमी परेशान हुआ। जब लोकल सत्संग होता है तो वहां वातावरण के साथ साथ मुझे तो इसलिए तबीयत लगती है, सब लोग इकट्ठे मिलकर करते हैं। लेकिन जब लोकल आदमी रेगुलर सत्संग करेगा तो आदमी, हम लोग का काम इतना नहीं है कि जगह जगह भंडारे करें, जगह हमारा काम ये मनुष्य के जीवन में उद्धार कैसे हो सकता उसका। तो उद्धार जो है वो लोकली सत्संग नहीं करेंगे कभी नहीं हो सकता। और आप देख लीजिए वैसे ही लोग थे, धीरे धीरे फिर वही कमजोरियां आती चली जाती हैं। सत्संग लोकली बहुत जरूरी है, लोकली बहुत जरूरी है। जगह घर पर इसलिए करते हैं रोटेशन में कि उस परिवार के भी लोग इंटरेस्टेड हो जाए। आप इंटरेस्टेड हैं, आपके बच्चे नहीं है, देखिए 3-4 लोग हमारे यहाँ के हैं, दीक्षित जी आते थे उनके परिवार का कोई नहीं, क्योंकि अकेले आए कभी वो नहीं हुआ। ये जागीलाल जी थे, बच्चा कभी गायब हो जाए होगा के साथ जो यहाँ के केशव बाबू थे, ये वो एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आप लोगों ने देखी है। कि एक वो जो बिंदी वाले शुक्ला जी थे, उनके लड़के बस दादाजी महाराज की समाधि पैसा दमा खाल भंडारे के दिन भले पहुंचते हों। तो जब तक आपका परिवार का एनवायरमेंट, इसीलिए लाला जी महाराज साहब कहते थे नहीं कि परिवार का इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो ये कहते ही थे कि हमारा परिवार है, हमारा सत्संग नहीं है। जब कोई पूछता था कि साहब ये हमारे ही नहीं अपने परिवार के लोग हैं, भाई ने वो कभी उन्होंने बताया सत्संग ही है। परिवार का मतलब ये पूरा परिवार उसी माहौल में रंगा हुआ है। एक दिन में ना आपको हुए ना बच्चा भी सुधरेगा, लेकिन उसे ये मालूम हो जाए कि साहब हमारे यहाँ भंडारा होता है, हमारे यहाँ पूजा होती है, हमको भी करनी चाहिए। तो धीरे धीरे वो भी दुनिया भोगता भोगता करने लगेगा। नहीं होगा कितने ही हो, जैसे अगर मान लीजिए किसी की पत्नी आती है, जैसे उसकी डेथ हो गई, खत्म हो गया, पति आता है या पति पत्नी रहे दोनों जनों का वो हो गया, उसी रोज वो खत्म हो जाए, तो कहाँ किसी का आप भला कर पाए। भला तब है जबकि वो बलावर भलाई चलती रहे। एक साहब आए थे, हॉस्टल का जमाना था तो वो हर इतवार को आते थे, इस बार को स्पेशल डाइट बनती थी। अजब पैसे की दिक्कत थी, जब वो खा के जाते थे उस वक्त हमको भूखा भी रहना पड़ता था। ताऊजी ने हमसे पूछा, हमने कहा ताऊजी इनको पूजा वूजा से तो कोई इंटरेस्ट नहीं, ये आपने कह दिया है इसलिए आते हैं, स्पेशल डाइट खाते हैं, एक दिन हमको भूखा रहना पड़ता। हंसने लगे। उन्होंने उनसे कहा कि अगर अब आपको आगरे जाने की जरूरत नहीं है तो बाद में कुछ दिन बाद वो छोड़ के चले गए। क्या था कि अस्पताल के बेनिफिट थे, टूंडा से अस्पताल पास था, अगर यही जगह थी उस वक्त, तो उन्होंने अपने 10 मरीज ले आए कि साहब इसका ये करा दीजिए, इसका ये करा दीजिए, तो दुनिया शामिल थी। पर वो आदमी धीरे धीरे अपने आप वो खत्म होता चला जाएगा। सत्संग का मतलब ही ये है कि एक मरता आप हो गए तो आपका पूरा परिवार धीरे धीरे हो। इसी चाचा जी महाराज साहब ने चुटकुले में यही लिखा है कि मैं जो अपनी पत्नी को अपना हम ख्याल नहीं बना पाया वो तालीम का हकदार नहीं हो सकता। जो तो दिन भर आपके साथ रही वो आपके विचार से सहमत नहीं है थोड़ा बहुत भी, तो कैसे आप दूसरे आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उस वक्त उनकी सब चीजें ये हंसी समझ में आती थी। तो परिवार धीरे धीरे ये कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस है और उन्हें वो, और नहीं है तो फिर गुरुदेव को हमने देखा अपने बच्चों से कोई कंसर्न नहीं रखते थे, जो जब तक कोशिश की है उसके बाद उन्हें कोई कंसर्न नहीं था। किसी उनका साहब ये है शादी है, उन्होंने कहा अच्छा हाँ चले चलते हैं, हम चले गए, उसके बाद उन्हें कोई कंसर्न नहीं था। उन्होंने बेटे ये हमारा परिवार नहीं है, हमारा परिवार तो ये है। हम बहुत से लोगों को ये शिकायत थी, यानी उनके लड़कों से भी मिलिए तो कहेंगे साहब उनने सत्संगों के लिए बहुत कुछ किया, हम लोग के लिए कहे, ये नहीं देखेंगे कि तुमने कोशिश भी नहीं की और यू आर नॉट डिजर्विंग। यानी उन लोगों से भी मिलिए इस एज में, हाँ चाचा जी ने साहब उन लोगों के लिए बहुत किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो एक्चुअली फिर वही उनका परिवार हो जाता, उनका वो परिवार नहीं होता। जिस्मानी औलाद से ज्यादा वो लोग रूहानी औलाद को अपने बेटर समझते हैं। तो जिस किसी को देखिएगा, जब तक परिवार नहीं बन पाएंगे, जब तक कि इस तरह से, तब तक आगे की गाड़ी नहीं चलेगी। तादाद जरूर कम होती है। लाला जी महाराज साहब ने यही लिखा कि मेरी छोटी सी जमात है लेकिन इसका मुकाबला मैं उन लोगों से कर सकता हूं जो बरसों का अभ्यासी है और ABCD भी नहीं जानते। ये खाली इसीलिए कि उन्हें अपने उस पर कॉन्फिडेंस था। किसी को कोई भी डर नहीं था। ये तो जो बड़ा होता था उसको भाई कहते थे, जो छोटा होता था उसको कहते थे भाई अपने परिवार के अपने ही बच्चे हैं। तो परिवार बनाया। फूफा जी न जानते थे न कुछ थे, खाली ये कि हम शामलाल के बहनोई हैं। तो उन्होंने भाई जब उनके बहनोई है तो हमारी बेसी शुरू है। समझे, वक्त आखिर था, इस विद्या को उन्होंने भर दिया। तो एक परिवार की तरह रहें तब सत्संग का वो है। सैकड़ों लोग हम लोगों ने देखे अपनी आंख से जो उन बुजुर्गों के साथ रहे और आज उनके घर में कोई भी नहीं है। ये जो इसमें लिस्ट छपी है, जो सरदार जी भाई साहब हिचक रहे थे, ये सब वो लोग हैं जो ताऊ जी के हाथ के सबसे पहले बैत लोग हैं और उनके परिवार का कोई लोग नहीं है। हम तो एक साहब ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा लास्ट में छापेंगे आपकी, आपका लेख लास्ट में छापेंगे। तो ये सब वो लोग हैं जिनको सबसे पहले उनने दीक्षा दी। इसका मतलब उस परिवार में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहा, चाहे उनने कोशिश की हो जैसे भी हो, रीजन जो भी रहा हो, लेकिन ये सत्संग, इस किस्म के सत्संग हमारे बुजुर्ग नहीं चाहते थे। खाली ये कर लेना कि ईश्वर को याद कर लेना, उसको वो नहीं। मान लीजिए एक घर में एक आदमी अच्छा पढ़ लिख के वो हो गया, दूसरों की मदद नहीं कर पाया, दूसरे नहीं तैयार हुए, तो कहाँ परिवार रहा, खुद हो गए। तो यही परिवार था हम लोग। कभी
देखिए अगर ईश्वर ने मौका दिया तो भैया को बुलाएंगे तो यही कहेंगे चाचा जी ने हम लोग के साथ नहीं सत्संगी होंगे साथ बहुत क्या, लेकिन जब तुम उनके परिवार को होते हुए परिवार नहीं बन पाए तो वो क्या करते। गुरु का ख्याल बना रहे, गुरु की याद बना रहे, नाम का जाप होता रहे तो कोई चीजें वो नहीं होंगी। इन चीज से गाफिल होंगे डेफिनेटली दुनिया अपना असर दिखाएगी। अच्छा साहब, अस्सलाम वालेकुम।